ओम शांति। सीरीज चल रही है 16 कला संपूर्ण। 16 कलाओं में से पहले 5 कलाएं हो चुकी हैं। पहली थी आर्ट ऑफ स्पीकिंग, उसकी 8 सीरीज चली। आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति, डिटैचमेंट, फ्रीडम, ये 5 सीरीज हो चुकी है। इसकी 40 किस्तें हो चुकी हैं। अभी आज है आर्ट ऑफ बैलेंस, क्योंकि जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, संतुलन। अगर जीवन में संतुलन नहीं है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हमारे मन में कई प्रकार के सूक्ष्म बीमारियां पैदा हो जाती हैं, या परिवार में, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं, जीवन नीरस बन जाता है। तो चाहे हम परिवार में रहते हैं या समाज में रहते हैं या ऑफिस वर्क कहीं भी जाते हैं, आर्ट ऑफ बैलेंस बहुत जरूरी है। हर बात में बैलेंस रखना, इस ब्राह्मण लाइफ में भी बैलेंस अति आवश्यक है। जो बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है, लौकिक और अलौकिक, ज्ञान और योग में बैलेंस। अगर खाली ज्ञान पढ़ते जाएं, योग नहीं करें तो भी रस नहीं बैठेगा जीवन में। और खाली योग ही करते रहें बिना ज्ञान के तो क्या होगा, तो भी नीरस होगा। तो हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो हम देखेंगे अभी आज जो बैलेंस है रमणीकता और गंभीरता का। इस ब्राह्मण जीवन में रमणीकता भी अति आवश्यक है तो गंभीरता भी उतनी ही जरूरी है। और इस गंभीरता और रमणीकता में अलौकिकता चाहिए। संसार में भी रमणीकता होती है, गंभीरता भी होती है, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में और उस गैर ब्राह्मण जीवन में, संसार में, दोनों में बहुत फर्क है। इस ज्ञान मार्ग में अगर रमणीकता नहीं है, सीरियसनेस एंड एंटरटेनमेंट, तो रमणीकता और गंभीरता दोनों अति आवश्यक है, लेकिन उसमें अलौकिकता समाई हो। संसार में देखते हैं रमणीक भी कई लोग होते हैं, जो बातूनी भी बहुत होते हैं, बहुत बोलते हैं, हंसाते भी हैं, है ना। उसमें एक कहावत भी है हंसी के ऊपर, कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ है खांसी और लड़ाई की जड़ है हंसी। हंसी मना हंसी, जो बिना अलौकिकता के है। और कहते हैं जीवन जीने की, जिसको आगे कला उसकी टल जाती हर बला। तो ये दोनों अति आवश्यक हैं। तो हम देखेंगे अगर बिना अलौकिकता की रमणीकता है तो उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं, और बिना अलौकिकता की गंभीरता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अगर बहुत गंभीर है तो लोग उससे पहले बहुत डरते हैं, उसके पास ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा उसकी जो नेचर है ऑफिशियल ही रहती है, उससे जैसे डर लगता है उसके पास जाने से। सहयोग मांगने की जैसे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, अगर हिम्मत रख भी देंगे तो सामने जो गंभीर व्यक्ति होगा तो जवाब भी ऐसे देगा कि सामने वाला सहयोग लेते हुए भी नहीं लेगा। हाँ जी, दोबारा आएगा नहीं वो। और उसको हम देखेंगे अलौकिकता में परिवर्तन करेंगे तो उसका भी फायदा है ना। जैसे आज बाबा ने बताया ना कि इस विनाश में भी क्या है, कल्याण समाया हुआ है। मुक्ति मर्ज है, इमर्ज है, मर्ज है, इमर्ज है, इमर्ज है, मर्ज है, मुक्ति मर्ज है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं हर बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना है, वो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हमको जो गंभीर बनना है उस गंभीरता में अलौकिक तस्माई हुई है। हम देखेंगे गंभीर कहां कहां बनना है। तो सबसे पहले तो हमको पुरुषार्थ के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुरुषार्थ के प्रति गंभीर नहीं है तो बहुत सारी बातों से हमें नुकसान होता रहेगा। हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसी कोई मंडली आती है, कुसंग में चले जाएंगे, हमारी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, हमारा बोल पर अंकुश नहीं रहेगा, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या सोचना है, संगठन के साथ कैसे चलना है, इन सब ये सब से हम लूज होते जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ के प्रति बहुत गंभीर होने की जरूरत है। जो बाबा ने अनेक प्रकार की हमें प्रोग्रेस करने के लिए युक्तियां बताई हैं कि बच्चे समय समय पर अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो, राज्यों की विभिन्न अनुभूतियों का अनुभव करते रहो, एक एक ज्ञान बिंदु जो बाबा कहते अनुभव मिलाओ, तो उसके प्रति बहुत गंभीर सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्या अपने आप से हम पूछते हैं कि मैं वास्तव में उतना अपने पुरुषार्थ के प्रति या बाबा ने जो अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हैं उसके प्रति गंभीर हूं, या केवल वैसे चलाते जा रहे हैं? तो स्वयं के प्रति बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। गंभीर माना सजग, सतर्क, चौकस, अपने पुरुषार्थ के प्रति अलर्ट, अटेंटिव। गंभीर मतलब अलवेलापन नहीं, जहां अलवेला ने अंतर्मुखी तो गंभीरता में आएगा, लेकिन जहां अलवेलापन ना हो, जहां एक अज्ञानता की नींद ना हो, जहां विस्मृति ना हो, लक्ष्य की विस्मृति ना हो, है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। हाँ, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हम जैसे सजग रहें, गंभीर रहें, तो इसके प्रति हमको गंभीर होने की आवश्यकता है। जो भी हमको सेवा क्षेत्र पर अनेक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उनके प्रति हम जागरूक रहें, जवाब दे रहे हैं, जिम्मेवार रहें, तो उसके प्रति क्या हम जागरूक हैं? दूसरा, साक्षी अवस्था, जो अपनी समय समय पर हमको अनेक प्रकार के ऐसे साइड सीन आते हैं या परिस्थितियां आती हैं, उनके प्रति हम अपनी अवस्था को बनाने के लिए जागरूक रहते हैं, सेवा के प्रति, संगठन के प्रति, या बाबा कहते वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या हम जागरूक रहते हैं, या जैसे है वैसे चलते जा रहे हैं? तो स्वयं के प्रति बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर हम गंभीर नहीं हैं तो हमारे जो अंदर पुरुषार्थ की जो लगन है वो दिन प्रतिदिन धीमी पड़ती जाएगी, और अंदर में फिर उदासी बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। फिर अपने अंदर हीन भावना आती जाएगी, दूसरों को देखने लग पड़ेंगे जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास वो संसाधन है, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन है, टाइम भी है, परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हैं, फिर भी हम अपने पुरुषार्थ के प्रति गंभीर नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? फिर डिप्रेशन बढ़ेगा, उदासी बढ़ेगी, अवस्था नीचे ऊपर होगी। तो अपने पुरुषार्थ के प्रति गंभीर होने की अति आवश्यकता है। दूसरा है, हम देखेंगे रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस कैसे रखें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्वयं को अंडरस्टैंडिंग नेचर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझना है। संगठन में हम आए हैं तो सबको समझना है, क्योंकि अगर संगठन में तो सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है, अपनी अपनी नेचर है, अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है, तो उसको अंडरस्टैंड करना, समझना है, हर एक की सोच कैसी है, हर एक का बोल कैसा है। अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो उनके बहाव में हम बहते जाएंगे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग नेचर बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल सकता है, हमारी सोच के अनुरूप नहीं चल सकता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को भी देख के उसके माहौल को समझना है, उसकी परिस्थितियों को समझना है, उसके व्यवहार को समझना है, ताकि उसी के अनुरूप हम अपने को ढाल सकें। अगर खाली उसी के अनुरूप चलते रहेंगे तो हमारे जीवन में रमणीकता भी नहीं आएगी, और हमारे जो बाबा कहते हैं तुम्हारी जैसे खुशी तुम्हारी निजी संपत्ति है, खुशी तुम्हारी ब्राह्मण जीवन का प्रॉपर्टी है, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी से जैसे अनभिज्ञ रहें, विस्मृत रहें, तो रमणीकता कैसे आएगी? तो हमें अपनी प्रॉपर्टी, जो हमको निजी संपत्ति मिली है, जो बाबा से हमको इतनी सर्व प्राप्तियां अधिकार के रूप मिली हैं, शक्तियां मिली हैं, क्या वो हम स्मृति में रखते हैं? तो जितना जितना इस पुरुषार्थ मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो रमणीकता को कहीं देखना है, अपने आप को चेक करना, ग्रहण तो नहीं लगता जा रहा है, जो काली बाबा ने कहा कि तुम्हें कौन सा ग्रहण लग गया था, राहु का ग्रहण, तो हमारी रमणीकता को कहीं राहु का ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है, वो चेक करने की जरूरत है। दूसरी बात है, संगठन में हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, तो संगठन का साथ भी अति आवश्यक है। अगर हम अकेले पुरुषार्थ, व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ करना तो अति आवश्यक है, लेकिन संगठन में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए संगठित रूप से जो पुरुषार्थ का महत्व है उसमें एक बल है, शक्ति है, वो हमें एनर्जी देता है ना। संगठन में हम बैठे हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कोई भी एक बात हमारे जीवन को टच होगी, हमारी बुद्धि को, जैसे बुद्धि का ताला खोल देगी जो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ा देगी। तो संगठन का साथ अति अनिवार्य है, संगठन में शक्ति है, तो संगठन का साथ बिल्कुल जरूरी है। चाहे हम दो लोग ही बैठ के चर्चा करें, या डेली हम आश्रम में जाते हैं, या हम मधुबन में आते हैं, या संगठन में बैठे हैं, तो संगठन में बहुत सीखने को मिलता है। तीसरी बात है कि संगठन के साथ साथ जो हम संगठन में सीखते हैं उसको सारे दिन में बार बार रिवाइज करना, रियलाइज करना, नहीं तो संगठन की चीज संगठन में रह जाती है, मुरली क्लास की चीजें मुरली क्लास में रह जाती है, फिर सारे दिन में हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। शाम को फिर हम देखते हैं तो बुद्धि जैसे कि तैसी दिखाई देती है, खाली दिखाई देती है, वही पुरानी चाल लगती है, अपने अंदर में जैसे खाली पैन महसूस होता है। तो स्वयं की चेकिंग भी करनी है साथ साथ में, क्या जो हमने सीखा है उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं, क्योंकि रमणीकता माना खुशी, एंटरटेनमेंट तभी कर सकें जब हमारी बुद्धि में मटेरियल होगा। खेल खेल, हम अपने जीवन को खेल तभी बना सकते हैं, नहीं तो अगर बुद्धि खाली है तो फिर समय आने पर मुरझा जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ये भी स्वयं की चेकिंग करनी है कि क्या हम उसके प्रति ये हैं, सजग हैं। और चौथी बात है क्रिएटिव माइंड बनना है, जो बताया कि मुरली को अलग अलग तरीके से हमको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर, या उसको जो बताया भैंजने के अंडरलाइन करना है उसको वर्ल्ड। तो अगर ये हमारी बुद्धि में रहता है तो हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के लिए हमारी बुद्धि में मटेरियल नहीं तो क्रिएट क्या करेंगे। तो नए नए तरीके से कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कुछ उसमें से नए नए टॉपिक निकालने पड़ेंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करना पड़ेगा, कुछ भविष्यवाणियां होती हैं मुरली में। अगर एक ही तरीके से हम मुरली को सुनते रहेंगे तो भी हमारे जीवन में चेंज नहीं आएगी, वही बुद्धि डल हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, बुद्धि में नए नए ज्ञान के रत्न भरने हैं, तो ही हम क्रिएटिव माइंड बन सकते हैं, तो ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है मनन चिंतन। अगर मनन चिंतन नहीं करते हैं तो क्या होगा, फैसला करो। हाँ, एक एक बात का मनन चिंतन कर, अपने अपना फैसला आप ही करना है, आज के मूल्य में पॉइंट है। तो मनन चिंतन क्या हम उसके प्रतिदिन सजग है, कोई भी एक पॉइंट लेके मनन चिंतन करना अति आवश्यक है। और ये आदत सहज पड़ने वाली नहीं है, बहुत जबरदस्ती डालनी पड़ती है, मन को मारना पड़ता है, बहुत सारी बातों से किनारा करना पड़ता है, क्योंकि व्यर्थ के संस्कार पड़े हुए हैं, पुरानी आदतें हैं, नहीं तो कोई ना कोई हम बीती बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसका चिंतन कितना चलता रहता है। माना मन में चिंतन करने की कला तो है, लेकिन चिंतन हम दूसरा करते रहते हैं, जबकि करना ये चाहिए कर वो लेते हैं, है ना। चिंतन को सही दिशा देना, तो मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। और ये शक्तियां, सब शक्तियां हमारे अंदर है, क्योंकि बाबा ने हम सबको जन्मते ही अपनी सर्वशक्तियां अधिकार के रूप में दे दी हैं, तो मनन चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। चौथी बात है मर्यादाओं के प्रति गंभीर। छठी बात, इस ब्राह्मण जीवन की जितनी भी मर्यादाएं हैं अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो भी हमारी खुशी गायब होती जाएगी, तो भी जीवन में रमणीकता नहीं आएगी, तो भी जीवन के प्रति गंभीर नहीं होंगे। जो हमारे कर्तव्य, जिनके प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए, उनके प्रति हम गंभीर नहीं हो सकेंगे। तो ये मर्यादाएं जो है हमारे जीवन का जैसे सुरक्षा कवच है, जितना मर्यादाओं के हम अनुरूप चलते हैं तो बाबा की ब्लैसिंग, ब्राह्मण परिवार की ब्लैसिंग, ब्राह्मण परिवार के प्रति हम आदर्श प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो मर्यादा हमारे जीवन के जैसे सुरक्षा कवच है, ऑक्सीजन है, हमारे आगे बढ़ने का साधन है, आधार है, फाउंडेशन है, नींव है। तो ये हमारे जीवन को मजबूत बनाती है, पुरुषार्थ की पगडंडी को सहज दिखाती हैं। तो ये जीवन जीने की कला जो है, ये कलाएं हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी, एक एक कला को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मर्यादाएं या जितने हमारे जीवन में पुरुषार्थ के जितनी विधियां हैं, हम किसी भी विधि में अगर व्यस्त रहेंगे तो हमारे जीवन निरंतर प्रगति पर बढ़ता रहेगा, कलाएं स्वतः आती जाएंगी। और रमणीकता के लिए जीवन में सरलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे संस्कार इतने कुटिल हैं, पुराने संस्कारों को जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, जिनको मानते नहीं, क्योंकि अहंकार तो अंदर में इतना होता है कि दबने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं होते, अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरा, पुरुषार्थ में जितना आगे बढ़ते हैं तो अहंकार भी बहुत महीन होता जाता है। तो अहंकार को छोड़ने के लिए अपन पहले तो उसको मानना पड़ेगा कि सचमुच मेरे अंदर में वो है। तो सरल, इजी नेचर चाहिए, बाबा ने कहा ना, जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे तो माया भी महीन रूप से अटैक करेगी, महीन रूप से बार करेगी। तो सरलता होना जरूरी है, सरल नेचर से ही अपने पुराने संस्कारों को छोड़ पाएंगे, तो ये सरलता भी जरूरी है। चौथी बात है सर्वशक्तियों, सातवीं बात है सर्वशक्तियों का फुल स्टॉक। समय आने पर, क्योंकि परिस्थितियां अनेक प्रकार की आती रहती हैं, तो किस समय किस शक्ति की जरूरत पड़ती है, किस समय किस शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो कौन कौन सी शक्ति हमको बाबा से मिली है वो हमको पहले बुद्धि में रखना पड़ेगा, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सुनना सुनाना पड़ेगा। तो ये हमको निरंतर अपनी स्मृति में रखनी है, क्योंकि ज्ञान रूखा सूखा नहीं है, रमणीक ज्ञान है ना। बाबा भी रमणीक थे, बाबा इतने रूखे सूखे नहीं थे, है ना। बाबा की बहुत सारी रमणीक बातें हैं जो हमने बड़ों से भी सुनी है ना। बाबा एक बार आंगन में खड़े थे, ब्रह्मा बाबा, हो सकता बीच में शिव बाबा भी हों, तो उधर से बाबा नाशपाती खा रहे थे, पलम खा रहे थे, तो सामने से चक्करदार बहन आए, तो अब पलम तो एक ही था, तो बाबा ने कहा बच्ची पलम तो एक ही है, तो मैं इधर से चूसता हूं तुम उधर से चूस दोनों। तो बाबा रमणीक थे, माना अपनेपन का कैसे एहसास कराया उनको, तो इतने रमणीक थे। और भी एक याद आती घटना, जो बीकानेर वाले शांताबेन जी हैं आजकल जो अजमेर में हैं, तो एक बार वो मधुबन में आए हुए थे, तो गर्मियों के दिन थे, तो ट्रेन में बहुत डस्ट होती है, एकदम मैले कपड़े हुए, तो पहुंचे इधर स्नान करना था उनको, तो बहन जी ने कहा बाबा मैं तो साबुन भूल गई लाना, तो बाबा ने कहा लच्छू दादी को कि दादी इसको, बहन जी को दे दो साबुन दे दो, बोला जो मैंने बना के रखा है वो दे दो, जो मैंने रखा हुआ है, तो बोला ठीक है। तो दादी ने साबुन दे दिया, अब बहन जी स्नान करने लगे और साबुन खोल के उसको लगाए तो झाग नहीं निकल रहा उसका, तो बहन जी ने देखा वो तो लकड़ी का साबुन था। तो बाद में बहन जी कहते बाबा मेरे मुझे साबुन मिल गया, मुझे नहीं चाहिए साबुन। बाबा कहते सब जानता हूं मैं। ये साबुन तो तुमको पता ही था कि बाद में पता चला लकड़ी के साबुन है। तो बाबा रमणीक भी थे, तो जीवन में अगर रमणीकता नहीं है, खाली ज्ञान हम करते पढ़ते जाएंगे और उसको रमणीक ढंग से हम अप्लाई करेंगे, तो उसके जीवन में खुशी रहेगी, और तो ही हम दूसरों को रमणीक बना सकते हैं। स्वयं का जीवन ही रूखा सूखा है, दूसरों को कैसे बनाएंगे। स्वयं ही अगर सामने से कोई ओम शांति करता है, हम थोड़ा सा मुस्कुरा के जवाब भी नहीं देते हैं, तो अगले के मन में हमारे प्रति भी वो गंभीरता वाली भावनाएं बैठ जाएंगी। भले हम अपने पुरुषार्थ को सोच रहे कि मैं अपने पुरुषार्थ के लिए दूसरों के प्रति गंभीर हो, लेकिन कहीं हम इतना भी गंभीर ना हो जाएं कि हमारे प्रति दूसरे के मन में भावनाएं बदल जाएं। तो ये है कि बाबा बहुत रमणीक थे, है ना। एक बार जगदीश भाई सुनाते हैं कि क्योंकि हमारे मूल्य बाबा की मूल्य में तो बहुत सारी बातें आती है ना, रमणीकता की, लाभ और ला का बैलेंस, है ना। तो जगदीश भाई सुनाते हैं, एक बार एक माता जी जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। अब माताएं तो माता ही होती हैं, ज्ञान की अथॉरिटी। तो ट्रेन में जा रहे थे तो माता जी बैठ गए, तो टिकट विकट ली नहीं उन्होंने। तो जब आया टीटी, तो टीटी ने बोला माता जी टिकट कहाँ है। बोला कैसी टिकट, बाबा की गाड़ी है ये तो। शुरू शुरू में ज्ञान का नशा तो होता ही है ना। तो बोला बाबा की गाड़ी है, इसमें टिकट की क्या जरूरत है। बोला माता जी नहीं, ऐसे नहीं होता, ला होता है, गवर्नमेंट के नियम कानून होते हैं, बिना टिकट के यात्रा करना अपराध होता है। तो ला ला की बहुत बात कर रहा था। तो माता जी कहती तुम इतने लंबे से ला ला की बात कर रहे हैं, बाबा ने हमको ला और लव का बैलेंस सिखाया है, तुम ला की बात कर रहे हैं, अब लव की बात कर तुम। ओ बेचारा टीटी लड़का, माता जी बुजुर्ग, बोला माता जी लव की बात कर रही अभी। तो बाबा के रमणीक बातें भी है जो हमको जीवन में लानी है, नहीं तो जीवन रूखा सूखा रहेगा, मजा नहीं आएगा। तो ऐसे मूल्य में बहुत सारे रमणीकता की बातें, जो भी हम योग करते हैं उसमें भी रमणीकता लें। जैसे बाबा कहते हैं मैं स्वीट का पहाड़ हूं, अब पहाड़ होता पहाड़ थोड़ा नहीं स्वीट का, तो ये शब्दों में है, तो रमणीकता है उस ज्ञान में, उस योग में रमणीकता है। तो हमको भी उस योग में रमणीकता लानी है। क्योंकि अगर खाली एक ही पॉइंट हम योग करते हैं तो रमणीकता नहीं है, तो लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। मन के अंदर जो पुरानी बातें रिकॉर्डिंग है वही गूंजती रहेंगी बार बार। इसलिए योग में भी नए नए तरीके से हमको नए नए विजन क्रिएट करने हैं, समय पर हमको निर्धारित करना है, इस समय हमको इतना योग करना है, इस विजन से करना है। क्योंकि नए नए तरीके से करेंगे तो जीवन में मजा आएगा, सुख आएगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, आत्मा को जैसे एक चार्ज करने की अनुभूति होगी, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। नहीं तो पुरानी चाल पर हम चलते रहेंगे तो फिर जीवन में नवीनता नहीं आएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए स्वयं ही जिस भी हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, उस माहौल को देखते हुए, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमको खुद ही कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ नए विचारों की ऐसे हमारे अंदर ऐसी ऐसा स्टॉक होना चाहिए, समय आने पर समर्थ संकल्पों का भंडार होना चाहिए जो समय पर हमको याद आए। ऐसा नहीं है हमारे पास स्टॉक है ही नहीं है और उस समय पूछ रहे हैं इधर उधर से, क्योंकि बाबा ने कहा समय ऐसा आएगा कि अंत में कर्फ्यू लग जाएगा, परिस्थितियां ऐसी आएंगी आपको खिड़की से बाहर झांकना भी नहीं मिलेगा, उसमें मुरली वरली भी नहीं होगी, कुछ मोबाइल चलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो जो हमारे मन के अंदर है मटीरियल वो ही काम में आएगा। तो लंबे समय से हमने जो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है वो ही हमारे पुरुषार्थ में प्रगति, हमारे प्रगति में काम आएगा। तो हमें जांच करना है कि इस ज्ञान को हम रमणीक तरीके से कितना कितना रोचक तरीके से अपने अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और उस रमणीकता को गंभीरता में मिलाना है। ऐसा नहीं खाली रमणीक ही रहना है, नहीं तो रमणीकता कहीं कहीं भारी भी पड़ जाती है ना। बिना अलौकिकता के अगर रमणीकता क्या होगा, फिर हम अपनी मित्र मंडली बना देंगे, फिर उसमें क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, ना केवल हंसी के कटाक्ष के व्यंग्य के बोल होंगे बल्कि हम दूसरों का भी समय बर्बाद करेंगे ना। ज्ञानियों का टाइम चल रहा है और उस समय में हम उस माहौल को ऐसे बना रहे तो क्या कितना हमारा हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। तो स्वयं के प्रति सजग रहना है कि हम कहां कहां अपने आप को रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस रखकर इसका पूरा फायदा ले रहे हैं। दूसरा है लूज टॉकिंग पर अंकुश लगाना है, कहीं कहीं हमारी लूज टॉकिंग तो नहीं है, है ना। छोटी छोटी बातें होती हैं जहां हमको चुप रहना है, क्या हम वहां चुप रहते हैं? जितने बोल बोलने चाहिए उतने बोल बोल रहे हैं या उससे एक्स्ट्रा तो नहीं बोलते जा रहे हैं? बहुत सारी बातें हम अपनी लाइफ में चेक करते हैं जो अनावश्यक होती है, जिनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमको अपने आप को चेक करना है कि हमारी लूज टॉकिंग तो नहीं है, क्योंकि बोल में बहुत सारी शक्ति है, तो ये भी स्वयं को चेक करने की जरूरत है। और रमणीक हम तब रह सकते हैं जब दूसरों को देने की नेचर होगी। हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, इच्छा ही नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम इच्छा रखते हैं, चाहे वो मान शान की इच्छा है, चाहे किसी से कुछ लेने की इच्छा है, तो वो लेने की इच्छा अगर पूर्ण नहीं होती है तो हमारे अंदर बहुत प्रकार की स्वयं के प्रति हीन भावना पैदा हो जाएगी या बार बार वही संकल्प चलते रहेंगे। तो हमें लेना नहीं, हम दाता के बच्चे हैं, सबको देने की भावना रखनी है, कुछ ना कुछ देते रहना है। और सबसे बड़ी बात है दान, दान कौन सा है? सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान और शुद्ध संकल्पों का, शुद्ध वाइब्रेशन का दान, जो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं के अंदर इतने शुभ वाइब्रेशन शुद्ध संकल्पों का अगर समर्थ खजाना भरा हुआ है तो हम दूसरों को दे सकते हैं। स्थूल में ज्ञान देना भी आसान है, स्थूल चीज भी देना आसान है, लेकिन सबको शुद्ध वाइब्रेशन देना, या मधुबन के चारों धाम के वाइब्रेशन सब आत्माओं के पास पहुंचाना, पूरे ब्राह्मण संसार को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसे वाइब्रेशन उनके घर तक पहुंचाना, क्योंकि जो बाबा कहते हैं अंत में यहां सब आ भी नहीं पाएंगे, जो जहां होंगे वहीं। तो हमको ये भी एक नया एक्सपीरियंस, नया प्रयोग करना है कि यहां बैठे बैठे मधुबन में बैठे चारों धामों के वाइब्रेशन सब आत्माओं के पास पहुंचाने, क्योंकि सब आत्मा में तो देखा ही नहीं किसी ने भी, सब थोड़ा नहीं देखा हुआ किसी ने। तो सब आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है, ये इच्छा रखनी है कि सबकी इच्छाएं पूर्ण करनी है, दूसरी इच्छाएं नहीं रखनी है। तो कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना में अगर हमारे में कमी है तो भी हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए अपनेपन की भावना के सभी अपने हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, तो फिर हम किससे लेने, क्योंकि हम पूर्वज है, बाबा कहते तुम पूर्वज हो, देने वाले हो। तो हमको हमेशा देने की भावना का ये काम करते रहना चाहिए। और किस चीज में गंभीर होना है, साकाश देने में गंभीर रहना है। जो भी हमको टाइम मिलता है सारे दिन में, टाइम तो बहुत मिलता है, छोटे छोटे टाइम जो नहीं तो देखते हैं हम कहां कहां सोशल मीडिया में हमारा टाइम तो नहीं जा रहा है, जो बता रहे किसी गेम में टाइम तो नहीं जा रहा है या न्यूज में तो नहीं जा रहा है। न्यूज देख सकते हैं लेकिन सारे दिन उसी न्यूज के पीछे, शाम को भी देख सकते हैं या सारे दिन का सार नेक्स्ट न्यूज पेपर भी देख सकते हैं, लेकिन सारा ही टाइम हमारा उसी में तो नहीं चला जा रहा है। तो ये भी हमको स्वयं को चेकिंग करनी है कि कहां कहां हमारा टाइम वेस्ट चला जा रहा है, जबकि हम साकाश दे सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है। क्योंकि सब आत्माओं के अंदर मनसा सेवा करने का सामर्थ्य नहीं है, बाबा ने कहा अंत में तो प्रजा क्वालिटी आएगी। और आज हम देखते हैं बाबा से मिलने के लिए बच्चे आते तो कैसे कैसे आते हैं, देखते हैं कोई धारणा नहीं है, यहीं कई बार आते तो यहीं बार बीड़ी पी रहे होते हैं, देखते हैं हम कई बार तो उनको पूछते हैं कोर्स किया, बोले जाके कोर्स करना शुरू, अभी तो केवल आए हैं, इधर जाके कोर्स कर लेंगे। तो हाँ, सेवादारी आते हैं वो भी यहाँ ऐसे ऐसे होते हैं, तो अंत में आत्माओं के अंदर शक्ति नहीं है वो, है ना। और वहां जो शायद सेंटर में भी सुनाने के लिए बहनें नहीं सुनाती होंगी इतना, अच्छा सुनाते भी होंगी तो उनके अंदर करने का सामर्थ्य नहीं है, गुटका बीड़ी छोटी छोटी चीजें। इसलिए 15-20 दिन पहले था ना, कोई है तो नहीं सभा में जो बीड़ी सिगरेट पीता हो, उस दिन बाबा ने मुरली में पूछा, तो अंत में ऐसी क्वालिटी की आत्माएं आएंगी जिनके अंदर शक्ति नहीं होगी। तो वो हमारा फर्ज बनता है कि उन आत्मा को भी साकाश देकर उनके अंदर शक्ति भरना, उनको सामर्थ्य ताकत भरना, क्योंकि बिना संपूर्णता के आत्माएं वापस तो लौटेंगी नहीं। और संपूर्णता के लिए काली बाबा ने कहा दो चीजें, कौन कौन सी? याद और दूसरा कर्म भोग से। कर्म भोग से आत्मा को संपूर्ण तो बनना ही है। तो हमें जितना हमारा फर्ज बनता है छोटा छोटा हम टाइम देके उन आत्मा को साकाश दे, ताकत भरे, उनको शक्ति भरे, उनके अंदर एक उमंग उत्साह भरे, ऊर्जा भरे, एक पुरुषार्थ करने का जैसे उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। तो ये सूक्ष्म वाइब्रेशन की जो सेवा है सबसे बड़ी सेवा है। तो जो भी हमको मौका मिलता है इसको हमको चूकना नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से संगम युग छोटा सा मिला है, सारे क्लब में ही तो मिला है, आगे तो हम फिर कभी इकट्ठे मिलेंगे नहीं, क्लब आदि मिलेंगे, कौन कहाँ किसको जानेगा। ये रंग आज की मुरली है, ये रंग बिरंगी दुनिया बहा नहीं होगी, यही होगी, एक ही रंग वाले, व्हाइट रंग वाले। तो ये है। और एक बात जो बीच में बताया था किसने इंग्लिश में, मुरली को विधि पूर्वक सुनने के प्रति भी गंभीर। जितना समय हम मुरली सुनते हैं या कोई भी क्लास सुनते हैं तो हम कोशिश करनी है, क्योंकि योग में एकाग्रता हमारी तब बढ़ेगी जब पहले हम ज्ञान में एकाग्रता बढ़ाएंगे। तो ज्ञान में जब हम बैठते हैं क्लास सुनने या मुरली सुनने, बार बार अपने मन को एकाग्र करना है, कोशिश यह करनी है कि कितने पॉइंट हमने सुने उसको बार बार रिवाइज करना है, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और फिर योग में एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो मुरली सुनते समय एकाग्रता बढ़ेगी तो योग में एकाग्रता स्वतः बढ़ती जाएगी, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान फाउंडेशन है योग का। तो ये कुछ चीजें थी जो हमको रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस बनाए रखने के लिए जीवन में अप्लाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना बैलेंस के जीवन में क्या होगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। और अभी आप सुनाओ। हाँ, एक है हंसना, जिस हंसी में दूसरों का कल्याण समाया हो। अगर उस हंसी में कटाक्ष है या दूसरों को गिराने की भावना है तो वो कमेंट है, व्यंग्य है, तो उसमें जैसे दूसरों को गिराने के जो संकल्प हैं तो उसमें हमारा कल्याण नहीं है उसका भी ना। केवल ऐसे ज्यादा हंसते रहना तो उसमें तो फायदा नहीं है ना, और लौकिकता है उसमें समाई हुई है, तो उस लौकिकता में भी कल्याण नहीं है हमारी, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो लौकिकता वाली हंसी और अलौकिकता में जमीन व आसमान का फर्क है। हम सभी अपनी लाइफ में तो अनुभव करते ही है ना कि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद हमारा जो हंसी का स्वभाव है और पहले का कितना फर्क पड़ गया है। लौकिक परिवार में जाते हैं तो हमारा जो व्यवहार है उनके प्रति और अलौकिक परिवार के प्रति कितना पड़ गया है देखते हैं। लौकिक परिवार में जैसे अब दम घुटता है उनकी बातों को सुन के, सोचते हैं कब यहां से निकले, है ना। तो और अलौकिक परिवार में क्या होता है, सबकी एक एक बोल में कितने जैसे अंदर में रूहानियत समाई हुई है, उसमें खुशी समाई हुई है, उसमें एक एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा, उमंग उत्साह समाया हुआ है। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है लौकिक और अलौकिक में। तो रमणीकता लौकिकी और रमणीकता अलौकिक में बहुत फर्क है इसमें। हंसी में जो कहेंगे जो संसार की हंसी है उसमें तो गिरावट ही गिरावट है, और ब्राह्मण परिवार की हंसी है रमणीकता है उसमें हमारा उत्थान ही उत्थान है। हाँ, खुशी और हंसी। हंसी तो देखो हंसी खुशी के पल कहा जाता है, तो खुशी तो वास्तव में आंतरिक है हमारी, और हंसी जो है वो बाहरी ठहाके लगा के हंसना। तो हंसी एक लौकिक शब्द है, हाँ जी, जैसे रावण हंसता है। हाँ, और राम भी हंसता है, राम कम मुस्कुराता है, देखा होगा आपने राम को कभी आवाज में देखा, तो रावण की है हंसी और राम की है खुशी। खुशी में डांस भी करते हैं, हाँ, दांत निकलते हैं, और जिसके नहीं हो तो, और जिसके दांत ही ना हो तो नहीं। देखो अब कईयों के दांत ही ऐसे होते हैं वो बोलते भी निकलते हैं, बाहर निकले होते हैं तो वो उसमें कोई इतना, हाँ दांत तो दिखने चाहिए दांत। हाँ, देवताएं जो, हाँ एक्चुअली देवताएं गिरती कला में है, नहीं मुस्कुराहट थी, लेकिन देवताएं गिरती कला में है, चढ़ती कला में केवल ब्राह्मण है, इसमें हम टॉप बने, गिरते हैं तो फिर से गिरना चालू हो गया है। तो ब्राह्मणों की खुशी है जो ना सबसे ऊंची खुशी है, जो हंसेगा फंसेगा। हाँ, और खुशी वाले को ऐसे नहीं कहा जाता ना, आर्टिफिशियल लगा ले। खुशी एक खुराक है, हंसी के लिए बाबा ने खुराक नहीं कहा, खुशी एक खुराक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वो स्थान का भी देखना होता है उस समय। अभी टच आपने नहीं उसको किया, उसने आपको किया है ना, तो आपने तो नहीं ना किया, तो आप तो अपनी तरफ से किनारे रहना। तो कई बार ऐसे होता है, अब यहां मान लीजिए यही है, अब यहां 200 भाई बहन आ जाते हैं तो क्या होगा। तो ऐसे अगर हमें लगता है कि हमको टच नहीं होने, तो स्थान छोड़कर दूसरी जगह बैठ जाना चाहिए अगर स्थान है तो। हाँ, अगर स्थान नहीं हो तो टच करेगा वो, लेकिन हमको मन से टच नहीं होना। अब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, कई बीके डॉक्टर होते हैं, अगर वो ये सोचे इसको टच ही नहीं करें तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये वास्तव में हमारी मानसिक अवस्था की बात है। जितना हमारा मन पवित्र होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, तो भले कोई कुछ भी बाजू बाजू में बैठा, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उधर। सीधी सी बात है, हमें तो इस बॉडी से डिटैच, दूसरों को तो भूलना है, इस बॉडी को तो भूलना ना, है ना। तो जहां जगह होगी तो अकेले बैठ जाना, नहीं होगी तो बैठने देना बाजू में किसी को भी। हाँ, अपना बैग रख देना उधर बाजू में, कोई आ रहा है अगर नहीं आया लास्ट में तो लास्ट में पकड़ेगा फिर वो। फिर बोझ हो जाएगा। हाँ नहीं, वो बोलेगा ना, वो पूरा योग के टाइम खड़ा रहेगा और जगह तो थी, तो वो भी तो उसके मन में संकल्प चलेंगे ना, और हमारा भी बोझ बन जाएगा वो फिर। तो ये बातें ध्यान तो रखने योग्य हैं, क्योंकि बैलेंस जरूरी है, इसलिए समय और परिस्थितियां देख के हमको एडजस्ट होना अति आवश्यक है। हाँ जी, अलौकिक परिवार है, क्योंकि हमारा ये सहायकता तो ज्यादा अलौकिक परिवार के साथ ही है ना, उसके लिए तो इकट्ठे हुए। हाँ जी, लगता है उसको वास्तव में भी भक्ति वाले संस्कार हैं, जो हम सोचते हैं हमारा टच होने से हो जाता है, पावर आवर कम हो जाती है, ये तो इन सब चीजों से तो ऊपर जाने का है। हाँ, परम धाम चले जाओ, है ना, बाबा के इससे भी मिलने जाते तो क्या कहते, बाबा आप हाथ रख दो मेरे ऊपर। लेकिन कुछ दिन पहले था ना, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, बाबा दृष्टि देंगे तो भी तुम्हारे पाप थोड़े खत्म हो जाएंगे, तुमको तो याद करना है आज की मुरली में ना, कि तुमको इस जो ज्ञान जानना ही क्या है, ये साक्षात्कार करना है। तो केवल उसको जानना, उसको समझना, अप्लाई करना, यही साक्षात्कार है। नई बात है एकदम, बिल्कुल। और ये जो सारी बातें सुन, इनको अप्लाई करेंगे तो रमणीकता बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, रमणीकता है। इन सब जो पुरुषार्थ की बातें, इनको हम पूरा जागरूकता के साथ करेंगे तो गंभीरता हमारे में अपने आप आती जाएगी। गंभीरता का विषय बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि कहां कहां ऐसा भी होता है संगठन की धारा में कहीं बह तो नहीं जा रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ का टाइम है और हम कहीं वॉकिंग में चले गए हैं, या हमारे मनन चिंतन का टाइम है तो हम खाने पीने में लग गए हैं, तो इसके प्रति भी हमको गंभीर रहने की अति आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान का नेत्र बाबा कहते सदा खुला रहे। ज्ञान की स्मृति है, हमारे लक्ष्य की स्मृति है, इस ब्राह्मण जीवन की क्या हमारी जवाबदारियां हैं, जवाबदेही हैं, उसकी स्मृति है, तो हम गंभीर बनते जाएंगे। अगर हम उससे विस्मृत हैं, अनभिज्ञ हैं, तो हम जैसे गंभीरता में लूज होते जाएंगे हम, और वो हमारे लिए घाटा है। तो पुरुषार्थ के प्रति गंभीर तो होना अति आवश्यक है। बस, ओम शांति।
चाल फरिश्तों जैसी हो जो काल चाल फरिश्तों।